किरतराज प्रयाग को तीर्थों के राजा बनाया गया, तब उस समय के तीर्थों के राजा है सभी को अपने अनुशासन में बनाए रखे। किसी ने उन्हें छेड़ दिया, अरे भाई आप तो राजा है, परंतु मथुरा वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंड मानसी गंगा कुसुम सरोवर पावन सरोवर ये सब तो आपके पास आते ही नहीं है, पर कभी आपकी बात मानते नहीं, तो आप कैसे राजा बने। कुछ समय उन्होंने सोचा की बात तो सही है, ये लोग तो हमारे पास आते नहीं है, हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण से जाके निवेदन किया, तो भगवान ने कहा कि प्रयागराज मैंने तुम्हें राजा बनाया, पर तो अपने घर का मालिक नहीं बनाया, ये मथुरा वृंदावन तो मेरा घर है, तो इस घर का आधिपत्य तो हमने तुम्हें नहीं किया, तो तुम तो राजा हो, सभी तीर्थों के राजा, ठीक है इस बात को तुम समझो। उस समय प्रयागराज ने तो सिर हो करके चले आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्त्री द्वारा यह वृंदावन मेरा शरीर है, पर राधा जी कहते हैं राधे हृदयवान मोर मन वृंदावन, दूसरों का मंत्र मन है पर हमारा मन वृंदावन है, मन और मन एक के जानता हूं। राधा जी ने अपने स्वरूप से इस धाम को वृंदावन को ब्रजभूमि को प्रकट किया है, जो कि मधुवन तापवन कुमुदवन बहुलावन मारवन भद्रवन कामवन केलवन खत्रीवन बिहारवन दोमवन आदि वन और उपवनों के द्वारा विभूषित यह ब्रजभूमि, यह ब्रज चौरासी को राधा जी ने कृष्ण के लिए प्रकट किया है, कृष्ण की लीला बिहार भूमि है जो कि उनका निज 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 निवास स्थान। और प्रकाशन किताब में क्या कहते हैं, गोलो तो नाम नहीं है राम नहीं तो रे तदस, ये गोलो धाम जो है भगवान का अपना निज धाम, पर तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ये धाम मेरा कृष्ण धाम है, गोलो धाम गोलो यानी गोपाल लोग कही थी गोलो तो गायों का लोग, मैंने अपने लोग को गायों को दे दिया और मैंने अपने लोग को गो गोपी ब्रजगण ब्रजवासियों को दे दिया, और देख करके मैं उनके घर का बालक बन गया, मैं उनके घर का बालक हूँ, किसी के सखा और किसी के प्रियतम बन करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो पर ब्रह्म लीला दासी लीला पुरुषोत्तम वे लीला विहार कर रहे और ब्रजवासियों के ब्रजजनों के लीला रस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे रसविलास से श्री कृष्ण स्वयं रसी छेदकर अपना सब कुछ दान दे दिया, बोले कि मैं उन्हीं का ऐसे भगवान द्वारा प्रेमी और प्रेमी बन करके सत के अधीन बन करके जहाँ पर लीलाएं की है ये है ब्रज धाम। और इस ब्रज धाम में ब्रज विलास से श्री कृष्ण लीला भी बोध करते हैं, उन्हीं का धाम है जहाँ पर सुहान नंदिनी राधा जी के जो कि परम रसिका शिरोमणि उन्हीं के प्रेम रस का आस्वादन किया करते हैं, वहां भागवत के आस्वादन में उनकी सारी लीलाएं, इसकी कृष्ण की जितनी वत्सता है सभी वत्सताओं में कृष्ण ने कहा। और भागवत में देखा जाए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रेमी हूं, मैं अहम महत्व पराधीनों यह स्वतंत्र विपत्तीय, मैं भक्तों का पराधी, मैं मेरा भक्तों के सामने कुछ भी नहीं चलता है, वे लोग मेरे बिना मैं उन्हीं का हृदय हूँ, वे मेरे बिना किसी को नहीं जानते, मैं उन्हीं के बिना और किसी को नहीं जानता, उन्होंने जैसे सर्वस्व मेरे लिए समर्पण किया मैं भी अपना सर्वस्व उन्हीं को लुटा दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। भगवान भक्तों की वत्सता को स्वीकार किए, अधीनता को विवेचन हुआ था कि भक्ति के 6 लक्षण दिखाए गए, जो कि गुरु जी ने अभी अभी प्रवचन में माधुर्य एकादशी से बताया कि भक्ति के 6 पत्ते एक बीज भर के बीज अंकुरित हुआ, बीज के अंकुरित होने से दो पत्ते निकलते हैं, फिर दो पत्ते और निकलते हैं, इसके बाद फिर से दो पत्ते और निकलते हैं, जबकि एक पौधा बड़ा होता है। इसका मतलब है क्लेशर नहीं सुबदा मोक्ष लब्धता प्रेम सुदुर्लभा संगानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण दर्शनी चा योगी क्लेशर नहीं भक्ति करने से समस्त प्रकार का क्लेश दूर होता है, समस्त प्रकार के पाप ताप अपराध और जितने प्रकार के जो कुछ है सभी कुछ समाप्त हो जाता है। पाप राशि को इस तरह से वर्णन किया गया है जैसे कि सुबह का कुहरा होता है, कुहरा जो ओस गिरता है सुबह सुबह बहुत अंधेरा घिरा हुआ है, सूरज के निकलते ही उसके ताप के और प्रकाश के साथ साथ कुहरा एक मिनट के अंदर कहां घूम के चला गया कुछ भी पता नहीं। ऐसे सारे जीवन के जितने भी पाप राशि है प्रारब्ध अप्रारब्ध पाप पापी अविद्या ये सभी कुछ समूल नष्ट हो जाता है, भक्तों के जीवन में ये ठहरता नहीं नती रहता है। और क्या होता है कुछ कर्म ऐसे भी होता है जैसे कल विवेचन नहीं किया गया था, कुछ अपराध के कारण फल भोग होता है पर कुछ भगवत इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से जब फल भोग होता है कोई कष्ट आदि आया उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती है, जीवन में सुख की अनुभूति होगी होगी, दुख में भी कष्ट में भी सुख की अनुभूति होती है, ये भगवत इच्छा है। जैसे कि भरत माता जी के जीवन में हुआ, ये उनकी भगवान की इच्छा थी जीवों को दर्शाने के लिए एक हिरण के प्रति उनकी आसक्ति लगा, पर इन्हीं आसक्ति के कारण तीन जन्मों में घूमना पड़ा। तो ये भगवत इच्छा है ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कांटा दे करके दे कांटा निकालते हम संसार आसक्ति मोह को तोड़ना नहीं चाहते छोड़ नहीं पाते हैं, पर तो भगवान क्या करते हैं कांटे दे करके कांटा निकालते हैं, कभी कभी दुख कष्ट आदि दे करके छुड़ाते हैं विषय आसक्ति मोह ये भगवत इच्छा से होता है। कभी कभी जीवन में अपराध के फल स्वरूप कष्ट भोग होता है, जैसे कि गजेंद्र का उपाख्यान में दिखाया गया या दक्ष प्रजापति के जीवन में भी दिखाए गए कि नारद जी के प्रति थोड़ी सी अवज्ञा की उन्होंने गाली दिया, हमारे बच्चों को साधु संन्यासी बना दिया, जाओ कभी भी एक किले के साथ ले ले सकते हो गोधन काल से एक किले की पाओगे, हंसने लगे आज तो बंधन से मैं छुटकारा मिला बच गया, आज तो मैं सारी दुनिया में घूमूंगा और सभी जगह हनुमान की कथाओं को सुनाऊंगा। इसलिए नारद जी खुश होकर के बिना बजाते हुए चलते हैं सभी जगह तो हरि कीर्तन करने लगे। पर तो दक्ष प्रजापति को जो अपराध बना यही अपराध बढ़ते बढ़ते आगे चल करके इतना बड़ा विशाल और इतना महान बन गया कि शिव जी को देख करके रहा नहीं गया जलन पैदा हो गया, शरीर से इतनी गर्मी आग निकली गुस्से में गाली देते देते इतना अभिशाप दे दिया कि शिव जी को देख के बाहर नहीं गया, बहुत सारा बवंडर हुआ और इसी कारण अंत में जा करके दक्ष प्रजापति का विनाश हुआ, उनके उनको बकरे का सिर मिला जो कि बकरे का मुंड मिला, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के भी जिनको जन्म मृत्यु नहीं है उनको जन्म और मृत्यु दोनों ही स्वीकार करना पड़ा इसी अपराध के कारण। अभी भी बच्चों ने प्रकाश डाला अपराध पर कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति को अपराध से बचना चाहिए, थोड़ी सी कोई अवज्ञा अनादर गलती और इसी अपराध के कारण वहां भयंकर हो जाता है। एक बीज वृक्ष बन करके जीवन में ऐसे आता है कि जन्म जन्मांतर के लिए घटित चले जाता है, पर उस भक्ति की एक विशेषता एक महत्ता चाहे कितना जन्म निकल जाए फिर भी भक्ति उखर करके फिर से आ जाती है, भक्ति कभी समाप्त नहीं होती घट जाती है। जैसे कि गजेंद्र के जीवन में हुआ ये हाथे जो पहले जन्म में थोड़ी सी गलती की जो कि ये परस्पर ऋषि को आदर्शन खत्मा नहीं कर पाया। इसी कारण दूसरे जन्म में हाथी होकर के जन्म लेना पड़ा। हथिनी का संग मिला, बच्चे परिवारों के साथ में घूमता फिरता रहा। ऐसे घूमते फिरते भी यही बन गई थी। अंत में माधव वंश ने पकड़ लिया, पानी में खींचा था, पर बहुत लंबे समय तक खींचता ही रहा। अंत में उनके दल वाले सब निराश होकर के छोड़ दिए। जब चले गए बेचारा भूला रास्ते हा उदास करते हुए भगवान के चरणों में एक पुष्प लेकर के सूर से उठाया, आकाश में फेंका कि हे भगवान, आपके चरणों में यह पुष्पांजलि समर्पित हो, कृपया आप हमारा उद्धार करें। इतने में भगवान दौड़ करके आए, मां भरी कहते हुए उनके सिर पर हाथ धर दिए और उनकी रक्षा की। जबकि उनके शरीर से आत्मा निकली थी, वो देह धारण करके भगवान की स्तुति प्रार्थना की और भगवान के लोक को चले। मगरमच्छ को काट डाला, परंतु वो भी निकली, उसकी आत्मा निकली, दिव्य रूप धारण किया, गंधर्व रूप धारण करके गंधर्व लोक को गया, भगवान को प्रणाम कर दिया। दोनों दोनों जगह पहुंचे। क्यों? गजेंद्र ने पहले जन्म में भक्ति की थी, इसी कारण भक्ति कुछ समय के लिए दब गई। फिर से भक्ति फल भोग के साथ साथ जब अपराध समाप्त हो गया, फिर भक्ति निकल करके आई। उस समय गजेंद्र दिव्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करके भगवान के लोक को गए। परंतु गंधर्व उससे पहले जन्म में कोई भक्ति की नहीं, इसी कारण भक्ति के अभाव से भगवान के लोक को जा नहीं सके। सारे यूनिवर्स में जब तक हम गुरु पदार्थ से करके साधन भजन नहीं करेंगे, तब तक हम भगव सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। भाव की सिद्धि के बिना भगव लोक की प्राप्ति भी संभव नहीं। तब तक भगवान इस संसार में हमें घुमाते रहेंगे। साधक जीवन में साधन करना पड़ेगा, इसलिए हर एक साधक को चाहिए कि अपराध से बचे। यदि अभी अभी अपराधों के विषय में वर्णन हुआ है, इसी प्रकार इन अपराधों से मुक्त हो करके जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब इन छह प्रकार की छह लक्षणा भक्ति हृदय में प्रकाशित होगी, समस्त प्रकार का शुभ उदय होगा और शुद्ध विलोभा भगवत भक्ति जो कि अतीव सुदुर्लभ है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, ज्ञानतर सुलभा मुक्ति भक्ति यज्ञादि पुण्यतर श्रेयम साधन शास्त्र हरि भक्ति सुदुर्लभा। यज्ञ के द्वारा भोग वैभव सुलभ और ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ, हजारों साधन करने पर भी भक्ति दुर्लभ। साधन करके हम साधक बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, हम त्यागी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, पर स्वभाव का ये काम हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये होगा केवल ऐसे रसिक संत महान पुरुषों की अहित की कृपा से। इसलिए यह भक्ति कृपा सिद्ध है। इस प्रकार भक्ति का विवेचन हुआ है, मैं यही कर रहा
हूं। आनंद के बिना ये धाम परिक्रमा उससे नहीं कुछ लाभ नहीं होता है। धाम परिक्रमा के तात्पर्य कौन करता है? कुछ दिन पहले हमने पुस्तक के विचार विभिन्न से श्रवण कर रहे हैं। इस संसार में तीन प्रकार के लोग धाम परिक्रमा करते हैं। एक तो केवल अकेला अपना धाम परिक्रमा करते हैं, चलते रहते हैं, उसमें उन्हें कुछ लाभ नहीं होता है, केवल सुख ही मिलता है। और एक भक्त धाम परिक्रमा करते हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं, उस धाम की महिमा कीर्तन करते हैं और गुरु विष्णु के मुखार विंद से और बहुत दर्शन करते हैं। और तीसरी व्यक्ति जो होते हैं वो गुरु विष्णु के साथ में चलते हैं और भाव में विभोर होकर के वो समस्त स्थान को दर्शन करते हैं, धाम की महिमा श्रवण करते हैं। इसलिए भक्तों ने ठाकुर कीर्तन करते हैं, ब्रजवासी जवान शुरू हो रहे तथा देखो श्री राधा नाथे वसुदेव ठाकुर इस प्रकार धाम हनुमा वर्णन करने कहते हैं, हे ब्रजवासी जन आप लोग ब्रज में धाम में रहते हैं, आप लोग राधा गंध के स्थापित दान दे रहे हैं, इसलिए आप लोग हमें कृपा करें बहुत बहुत स्थान की महिमा वर्णन करें। इसी प्रकार हम लोग आज एकत्रित हुए हैं किसलिए, केवल मात्र से श्री गुरुदेव की अनुगत में उस धाम महिमा की कथा श्रवण करने के लिए, वह धाम की शक्त एक कर्ण की कृपा प्राप्ति करने के लिए। विशेष करके श्री सनातन रसोई पाद भागवत ग्रंथ में यह वर्णन किया, नारद जी सभी भगवान से यह वर प्राप्त किया था। सभी भगवान बोले हे नारद जी, इस लीलास्त्री में कोई भी जाएंगे परिश्रम अनुगत में उस लीलास्त्री के धुनी बनाकर स्पर्श करेंगे और धुनी कोई स्थान पर जाकर के यदि कोई प्रेमी भक्त के साथ और कोई धाम की महिमा श्रवण करेंगे उनके हृदय में पति अवश्य ही वो भी प्रेम इसमें कोई संदेह नहीं। इस विश्वास लेकर के गुरुदेव के वचन विश्वास लेकर के हम लोग आज गुरुदेव के अनुगत में धाम परिक्रमा कर रहे हैं। यही हम लोग की आशा है, जन्म जन्मांतर में वो धाम हमारे हृदय में उदित हो, यही हम मैं गुरु के चरण में प्रार्थना करता हूं। वंशा
मिलन और विप्रलम दोनों का स्थान है। विशेष करके कृष्ण के जन्म के पहले उनके पितामह और जन्म वही रहते थे और वहीं पर उनके पांच पुत्र हुए, परंद सुनंद अनंद नंदन
नंद बाबा को पुत्र नहीं हुआ, इसलिए वे नंद गांव में आश्रेष्टा से जहाँ पर आप लोगों ने प्रसाद पाया वहीं पर आश्रेष्टा महादेव की पूजा कर और एक छात्र सुंदर है जिसको आजकल सबको दूर करके प्रजन्य बाबा नंद बाबा के पुत्र के लिए लक्ष्मी नारायण की उपासना और वहां पर शंकर जी की आराधना पर आकाश प्राणी सुनी नंद को विश्व विख्यात इसके बाद में नंद गांव में गोचर भूमि कम हो गए खास कम हो गए और दरिद्रों का उत्पाद होने लगा,
इसलिए इसको छोड़ करके
सभी लोग गोकुल में चले। गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ और रावण में राधा जी का जन्म हुआ, फिर इसके बाद में वृंदावन और वृंदावन के बाद में वैकुंठ अवस्था में वैकुंठ माने कहीं पांच
छह
पांच से नौ इस अवस्था तक पौगंड और इसके बाद में तब किशोर होता है। तो वृंदावन में आए और फिर वहां से धीरे 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 फिर नंद गांव में बने इत्यादि होते हुए इसे किशोर अवस्था में या पौगंड अवस्था में नंद गांव आए, वहीं से गोपाष्टमी आरंभ पहले
दक्षिणियों का, दक्षिणों का और पीछे कईयों का। आज गोपाष्टमी थी, गोपाष्टमी का मेला वहां लगता है। इसके बाद जो वही रह करके उच्चारण करते करते चरण पहाड़ यहाँ परेशान चरण पहाड़ वहां जाते आस पास जाते जावन होकर के शाम को लौटते वहां पर प्रतिगोपियों से राधा इत्यादि जी से बस आंखों के कारण मिलन हो जाता। आकर के पावन सरोवर में गलियों को पानी पिलाते अपने स्नान करते वो दोहन करते और कुछ समय के बाद दूर आए। अभी नौमी आने वाली है, आज अष्टमी है, आज नौमी तो गोपाष्टमी
कल पर
नवमी होगा जिसको अक्षय नवमी कहते हैं। लोग मथुरा गुरु गोविंद और वृंदा
तीन बोल का
इनकी माला जैसी परिक्रमा करते हैं। इसी नवमी को अक्षु नंद गांव में आए और कृष्ण बलदेव को तैयार किया। देव की और वसुदेव पर बड़े अत्याचार हो रहे, उनको विश्वास था और जानते थे कि ये स्वयं भगवान कृष्ण है। पिछले समय में 9-10 वर्ष के बच्चे से था, जानते थे कि जाकर के मार करेगा, इसलिए बहुत कुछ उनको कहा गया। छाती पर पत्थर और ऐसे मारता है और रोज उनको धमकाता है। कृष्ण और बलदेव को आ गया जोश, चल रहा है और गए इसे मार। मथुरा जो गए कह करके जो मैं कल परसों लौट आऊंगा और परसों नहीं लौट, जिस समय आ रहे थे गोपिया के घोड़ों को बांधों पकड़ ली, सब चारों तरफ में करोड़ों करोड़ों गोपिया गिर गई, सत्याग्रह कर दिया, जाने का रास्ता नहीं है। कृष्ण बदलाव को बैठा करके ले जा रहा कृष्ण रथ से उतर करके और उनको समझाए, मैं कल परसों जरूर आ जाऊंगा, मेरी बात पर विश्वास रखो, मैं आऊंगा। उस समय वहां गई और उनके जीवन में कैसी दशा हुई आप लोगों ने सुना है। मैया यशोदा ना हो नंदी हो, नंद बाबा कहीं वो ब्रज में अपना मुख नहीं देखा पाए और उसी का वर्णन भ्रमर ने भी किया है। भ्रमर ने बहुत कारण इसलिए यह मिलन का भी स्थान है। पहले मिलन का वर्णन हुआ है और पीछे तीरक, तो तीरक का स्थान उद्धव के आगे है, यह धर्म के आगे है। और जब कृष्ण को चार करते कदम पटे में कदम के ऊंचे जाकर उसे बंसी बजाते श्यामली कमली धौली कालिंदी पद्मगंधा और रात के समय में बंसी में अस्फुट स्वर से मेरे शब्द का उच्चारण करते, इससे सभी गोपियां अपने को समझ मुझे बुला रहे हैं, सब वहाँ पर हुआ, तो ये सब मिलाए संक्षेप में नंद गाँव में आप लोग प्राण हैं, इसलिए अब आरती को भी और आरती के बाद विश्राम कीजिए, कल फूल विश्राम So try to give up all these things.
Nectar.
They spoke in the advice of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, his Gaudiya Rasika Chastra, Mahapamapodhyaya. They have written only for us what they are realized in their heart of the Hridayin Lokus and Gaudiya. Lokus Siddha Mahapurus the Mahaprabhu ki kripa prapta the. Tara amate janma esha prapadam. Etur me bhakti so prakar. Tini kripa kare bhakti hriday se prapadam. Ityadi vishay ke anek kuchh bola hoyeche. Ekhon bolchen যে অসুখের সম্বন্ধে বলেছেন আগে ভক্তি প্রথমই স্টেজেতে ভক্তি ক্লেশাতে আর সঙ্গে সঙ্গে শুভাকার দুটা এক সঙ্গে বলেছেন বলছেন যে সে কিরকম স্তরেতে অসুখ নিবৃত্তি অথবা শুভ প্রাপ্তি কিরকম ভাবে হয় সেই জন্য বলছেন ভক্তি পরিচান হও বিরক্তি অন্যত্র সেই সেই কাল প্রপদ্যমান যথাযথা সুতুষ্টি পুষ্টি উদ্বায়ু বিকাশ বলছেন যে প্রকার ভোজন যারা করে প্রত্যেক রাত কে সঙ্গে সঙ্গে তিনটা জিনিস এক সঙ্গে সম্পন্ন হয় তুষ্টি খাওয়ার পরে যে তুষ্টি হচ্ছে আমি খাচ্ছি পুষ্টি শরীরের পুষ্টি জীবন শক্তি সঞ্চার এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি তিনটি এক সঙ্গে ওই রকমে যারা ভগবানের শরণাপন্ন নিয়ে তার ভজন করে তখন ভজনের প্রত্যেক ক্ষণে যে ভগবানের প্রতি প্রেম আর নিজের প্রেমাস্পদ প্রভু স্বরূপের অঙ্গ ওই পরিমাণে আর উনকে অতিরিক্ত অন্য বস্তু মে পাইয়া তিনটি এক সঙ্গেতে তত পরিমাণে ভোজন করলে আমি ছিলাম গ্রাস খেলে যে হয়ে যাবে তা ওই পরিমাণে শরীরের পুষ্টি হবে আর আর খাবো যখন পূর্ণ খেয়ে নিলে আর খাবো ওই রকম হবে এই তিনটি ভক্তি বিষয়ে ভক্তি পরিশান অনুভব ভগবত অনুভব ফল আর সংসার বিষয়ে যে বিরক্ত বুকে হাত দিয়ে দেখব আমার কি হচ্ছে এইটা যদি বুঝা যায় তাহলে তো আমি ঠিক করে এইটি আমরা বুঝতে পারি না এই আপনি সমাজ পাচ্ছেন বলছেন যে এই প্রকার ভক্তিলতা ক্লেশাগ্নি অশুভতা দুটি পাতা এই কালে তারা হলেও ওই বৃত্তির তারতম্য অনুসারে ভক্তি অবিদ্যা আক্লেশের না একসঙ্গে না
যত পরিমাণে ভজন তত পরিমাণে সে ক্লেশ লাভ। ভাবাবস্থা গেলে প্রায় সব প্রায় গিয়ে গেলে তখন প্রায় থাকে না, ওই পর্যন্ত থাকে। আর দেশে না তার সুখ গুণে উদয় তার মনে হয় পরিমাণে যে সুখ গুণ। আমরা কত বছর তাহলে 40 বছর না 20 বছর না 25 বছর কৃষ্ণমূর্তির যে শুভ গুণ কতটুকু বেড়েছে হরদাস ঠাকুরকে মুসলমান দুজন 22,000 মেরে দিয়ে চাপি উঠিয়ে দিয়ে সব পেটিয়ে গেল। হাতের বলে হায় প্রভু এদেরকে সমান আমাদের কত আছে কৃষ্ণজিৎ এইসব ক্ষমা সহিষ্ণু এরা তবে শুনি তরুণ এইসব নিয়ে আমরা যাতে চেষ্টা করি কখনো এইসব বাইরের সততা কারোর সঙ্গে যেরকম মহারাজ হয়েছে দুর্যোধন লাখ হাতের প্রতি সত্যতা করে উনি কখনো মনে রাখা মনে করছে যে আমার ভগবানের এরকম ভাবে আমরাও সবসময় বিচার করবো এই বৈষ্ণবী গুণ কত দূরে এইগুলিকে কথা বলে দিলাম একটি তারপরে তাকে লাঠি দিয়ে মারলো সাপের কোন কন্ট্রোল না কিন্তু মারা কর্ম হয়ে যাবে দেন তার কর্মে কোন তোমাকে মুখ করতে যদি মার সাপ কামড়িয়ে দিলে তাহার কিছু হবে না তার পূর্ব অনুসারে সে ত্যাগ করেছে। মনুষ্যত্বের মধ্যে অনেকগুলি সুবিধা আছে কতগুলি অসুবিধা আছে ক্রম আছে কি পরিমাণে সে ভজন হল সেই পরিমাণে সে কি প্রকারে তার অনর্থগুলি অসুখগুলি কমল সহজে কমলে হয় না সহজে হয় না ভোজন এগ্রাস করে তাতে কতটুকু পেট পাঠ
এটা বেড়ে যায়
কিন্তু আছে ক্রম এক রাত্রে 10-20-25-30 এলাম
চক্রবর্তী ঠাকুর
বলছেন ভোজনে যে প্রতিগ্রাসের সঙ্গে যুক্ত আত্মধান বিবৃতি আংশিক রূপে যে কিন্তু দুগ্রাস খেলে আর কুকিরা আছে অনেকগুলি অন্য মিলে একটি গ্রাস হয়, প্রত্যেক অন্যেরই উপলব্ধ আছে, কিন্তু একটি অন্যের দানা খেলে কি হবে? এই প্রকারে বুঝবে ইহার প্রভাব অত্যন্ত দুর্লক্ষ আর অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ভক্তি অথবা ভজনের সম্বন্ধে এইরকম বিচার, অতএব সাধারণ দুর্লভ সূক্ষ্ম হলেও অভিজ্ঞ ভক্তগণ সাধকে ওদের কাজকে দেখে লক্ষণ দেখে কিছু কিছু স্থির করতে পারবে। যারা উন্নত ওরা বৈক্রমকে দেখতে পারে, অনুভব করতে পারে, আমরা সাধন করতে পারব। এখন বলছেন বৈক্রম আরম্ভ করছেন তোমাকে যদি কেউ গালি দেয়, অপমান করে, তার বদলা দিব এই
শব্দটি
কান বন্ধ করে দিয়ে সবথেকে ছোট পার্ট হচ্ছে শ্রদ্ধা। এইখান থেকে শ্রদ্ধা ভালো করে বুঝব, আর আমাদের বিরাট গোস্বামী বলেছেন কোন সাধারণ লোকের কুছ হরিকথা ইত্যাদি হয় শুনলে কৃষ্ণের সেবা করবার যে বাসনা উদিত হয় এই হচ্ছে যথার্থ শ্রদ্ধার স্বরূপ লক্ষ্য। কৃষ্ণ সেবা বাসনা যখনই তার হৃদয়ে উদিত হবে তখন তিনটা জিনিস গুরু কথা শাস্ত্রের কথা প্রথমটা হচ্ছে স্বরূপ লক্ষণ কৃষ্ণ সেবার আর একটি তিনটা দ্বারা যখনই তাহার বিচার করতে আসছে তখনই তাহার শ্রদ্ধা। প্রথমে অজ্ঞাতি থাকে, পরে জ্ঞান করে। এখন বলছেন ভক্তি মন্দিরে কে প্রবেশ করার জন্য প্রথম সোপান শ্রদ্ধা, এই যে ভক্তি সর্বজনী, জাতি জাতি কোন বিচার, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি শূদ্র দেশি বিদেশি সর্বত্র সব জায়গা, এমনকি দুরাচারীরাও ভক্তি করবার মর্যাদা দেখায়, অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও হরিকথা আশ্রম কার্য সাধু সঙ্গে ভক্তি মধ্যে প্রবেশ করে। কৃষ্ণ ভজনে জ্ঞানী, কৃষ্ণ ভজনে সবাই অধিকার, কিবাতি প্রতিভা সূত্র কি পুরুষ নারী, অতএব ভক্তিকে ভক্তির সাধনে জাতি পুরুষ স্থান কাল অপেক্ষা না থাকলেও ও শ্রদ্ধা জরুরি, শ্রদ্ধা নামে চলে, এমনকি এই শ্রদ্ধা ভক্তির পাঠ তো প্রথম অবস্থা, কর্ম জ্ঞান যোগ তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধা না করে যদি করে তাহলে অসুস্থ কর্মীদের জন্য, জ্ঞানী যোগী যত করে